आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई के वरिष्ठ पत्रकार दीपक रंजन। लोकसभा में आज प्रश्नकाल निर्बाध तरीके से चला। इसके बाद सदन में वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस ने सरकार पर रेलवे से संबंधित राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य हासिल करने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि भारतीय रेल की वित्तीय हालत गंभीर है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि सरकार को स्थिति में सुधार के लिए स्पष्ट दिशा सामने रखनी चाहिए। बिहार के कटिहार से लोकसभा सदस्य ने कहा कि राजस्व वसूली कम हो गई है। यात्री श्रेणी में 92,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया जा सका है, जबकि 2 बार किराए में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच प्रणाली की स्थापना के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं वो अब भी बजट आवंटन को देखते हुए दूर की कौड़ी नजर आते हैं। लोकसभा सदस्य ने दावा किया कि अमृत भारत के तहत 160 स्टेशनों पर काम हो पाया है और इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के बावजूद ये कार्य उदासीनता का शिकार है। अनवर ने कहा कि रेलवे में रोजगार सृजन की कमी होना चिंताजनक है और युवाओं में रोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है और इसलिए इसे अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने तथा लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि सरकार को रेलगाड़ियों के भीतर की स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद जून मालिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल में रेलवे का विकास कई दूसरे राज्यों के मुकाबले कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गणेश सिंह ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में रेलवे ने जो प्रगति की है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि रेलवे में जो असंभव दिख रहा था वो संभव हो गया है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद 34,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे पटरी बिछाई गई है। भाजपा सांसद ने कहा कि आज कश्मीर भी रेल के नेटवर्क से जुड़ चुका है। उन्होंने कहा कि भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा माल परिवहन नेटवर्क बन चुका है। सिंह ने कहा कि रेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत कई नई पहल शुरू की गई है। भाजपा सांसद ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत को रेलवे संपर्क से जोड़ने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के कौशलेंद्र कुमार ने वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए सरकार से वरिष्ठ नागरिकों, पत्रकारों, दिव्यांगजनों और 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं तथा 55 साल से अधिक आयु के पुरुषों के लिए रेल किराए में छूट को बहाल करने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस की जून मालिया ने भी रेल किराए में छूट बहाल करने की मांग की। कांग्रेस के बेनी बहनान ने कहा कि कोरोना काल के दौरान ट्रेनों के कई ठहराव स्टॉपेज बंद कर दिए गए थे, जिन्हें अब तक शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने इन ठहराव को बहाल करने की मांग की। शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ का हवाला देते हुए कहा कि मुंबई उप महानगरीय रेल नेटवर्क के तहत जब तक 6 लाइन नहीं बनेंगी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए एलिवेटेड ट्रेन चलाने पर भी रेल मंत्री से विचार करने का आग्रह किया। सावंत ने कोंकण रेलवे का मध्य रेलवे में विलय करने की भी मांग की। एनसीपी शरद चंद्र पवार के अमर शरदराव काले ने महाराष्ट्र में कोरोना काल में कई रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव बंद किए जाने का उल्लेख किया और इन्हें फिर से चालू करने की मांग की। शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बारणे ने रेल मंत्रालय के लिए अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए मुंबई लोकल रेल नेटवर्क में लाइन बढ़ाने में कई चुनौतियां होने का हवाला दिया और भूमिगत या एलिवेटेड रेल लाइन बिछाने की मांग की। वहीं तेलुगु देशम पार्टी के जीएम हरीश बालियोगी ने कहा कि अनुदान की मांगों में रेलवे के आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण और क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है। उन्होंने रेल कनेक्टिविटी अंतिम छोर तक पहुंचाने और इसे प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर देश के अन्य रेलवे स्टेशनों का भी सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के तहत आधुनिकीकरण करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विष्णु दयाल राम ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि उन्होंने रेलवे में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम किया है और उस दौरान 3 रेल मंत्रियों के नेतृत्व में उन्होंने काम किया। प्रत्येक मंत्री ने रेलवे के विकास में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वे अपने अनुभव के आधार पर यह बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दृष्टिकोण तकनीकी आधारित और भविष्योन्मुखी है। भाजपा सांसद ने कहा कि आज भारतीय रेल में परिचालन जटिलताओं के समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल डेटा, डेटाबेस और कवच जैसी प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है, जिससे रेल यातायात अपेक्षाकृत सुरक्षित हुआ है। भाजपा के ही रामवीर सिंह विधोड़ी ने चर्चा में भाग लेते हुए रेलवे में सुरक्षा, आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं में लगातार ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि संप्रग के शासन में 2004 से 2014 तक औसतन प्रतिदिन केवल 4.2 किलोमीटर रेल पटरी बिछाई जाती थी और आज रोजाना औसतन 14.5 किलोमीटर पटरी बिछाई जा रही है। वहीं कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने दावा किया कि इस बार बजट का विशेष रूप से रेलवे के मामले में सबका साथ सबका विकास का सरकार की सोच पर खरा नहीं उतर पाया है। उन्होंने कहा कि उनका राज्य देश की जीडीपी में 3-4% का योगदान देता है और खाद्यान्न उत्पादन में उसकी बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन रेलवे अवसंरचना के मामले में हरियाणा को पर्याप्त संसाधन नहीं मिले हैं। समाजवादी पार्टी के देवेश शाक्य ने सरकार से मांग की है कि वंदे भारत रेलगाड़ियों पर जोर देने के बजाय सरकार को पैसेंजर ट्रेन की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने रेलवे को 2 हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें एक अधिक किराए वाली रेलगाड़ी चलाने और प्रचार के लिए है तथा दूसरा आम लोगों के लिए, जिन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के रेलवे बजट को लगातार कम किया जा रहा है। माकपा नेता अमरा राम ने सीकर की जनता और खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए और रेलगाड़ी चलाए जाने की मांग की। और अब आइए सुनते हैं राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के अविनाश और वाचक है लवलीन निगम।
राज्यसभा में आज अनुदान के अनुपूरक मांगों और उससे जुड़े विनियोग विधेयक पर चर्चा हुई। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सदस्य शक्ति सिंह गोहिल ने रसोई गैस की कमी नहीं होने का दावा करने के लिए सरकार को आड़े हाथ लिया। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद अरुण सिंह ने दावा किया कि पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने तेल और गैस संकट से बचने के लिए समय रहते कई कदम उठाए हैं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण भारतीय तेल टैंकरों को होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी बाधा के गुजरने की सुविधा प्रदान की गई। द्रमुक सदस्य पी विल्सन ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सहित विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनका बकाया केंद्र जारी नहीं कर रहा है। आम आदमी पार्टी सदस्य राघव चड्ढा ने आयकर रिटर्न से जुड़ा मुद्दा उठाया और कहा कि पति पत्नी को एक इकाई माना जाना चाहिए। बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान ने ओडिशा के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हुए कहा कि उसके 12 जिले प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। राजद के मनोज कुमार झा ने कहा कि श्रम और रोजगार सहित कई ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिनके आवंटन लगभग स्थिर हैं, जबकि देश की बड़ी आबादी इन मंत्रालयों से ही संबंधित है। अन्ना द्रमुक सदस्य एम थम्बीदुरई ने तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस पर द्रमुक सदस्यों ने आपत्ति जताई। माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास ने देश भर में रसोई गैस की कमी के कारण लोगों को परेशान हो रही है और कोविड जैसी स्थिति बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि रसोई गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी हो रही है। समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन ने उत्तर प्रदेश के आलू किसानों की समस्याओं का जिक्र किया और उनके लिए एक नीति बनाने की मांग की। मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति के कारण देश में गैस की समस्या पैदा हुई है। शिवसेना के मिलिंद मुरली देवड़ा ने कहा कि पश्चिम एशिया में हो रहे संघर्ष का असर दुनिया के विभिन्न देशों के साथ साथ भारत पर भी पड़ रहा है, लेकिन कोविड की तरह ही हमें संकट का भी उपयोग अवसर के तौर पर कर सकते हैं। भाजपा के संजय सेठ ने कहा कि ईरान और इसराइल, अमेरिका युद्ध तथा यूक्रेन रूस युद्ध के कारण तेल और गैस के कारखाने बंद हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के कारण भारत में घबराहट की स्थिति नहीं है, बल्कि हमारे 2 जहाज ईरान के होर्मुज से गैस लेकर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जानना चाहा कि देश में गैस सिलेंडर की किल्लत कैसे हो गई। बीजू जनता दल के निरंजन बिशी ने कहा कि विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों की समस्याएं आज भी दूर नहीं हो पाई हैं और वे विकास की दौड़ में पीछे हैं। भाजपा के सिकंदर कुमार ने कहा कि चालू खाते का घाटा लगातार कम हो रहा है और ये वित्तीय अनुशासन महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के स्वाति मालीवाल ने कहा कि राज्यों को राशि आवंटित होती है, लेकिन आपात स्थिति में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं होती। गांवों में आज भी चारपाई पर मरीज को डालकर ले जाया जाता है। बीजू जनता दल के सुल्ता देव ने कहा कि सरकार ने 10 साल से लोगों को लाइन में खड़ा कर रखा है। नोटबंदी में पैसों के लिए लाइन में खड़े हुए और आज गैस सिलेंडर के लिए हम लाइन में खड़े हैं। चर्चा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, भाकपा के संतोष कुमार पी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की फौजिया खान, भाजपा के रामभाई मुकारिया और घनश्याम तिवाड़ी ने भी हिस्सा लिया। चर्चा अधूरी रही। इससे पहले सुबह शून्यकाल में तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल के शीर्ष अधिकारियों को पद से हटाए जाने का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। शून्यकाल शुरू होने पर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि उनकी पार्टी आयोग के इस कदम का विरोध करती है और दिनभर के लिए सदन से बहिर्गमन कर रही है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है और उसके फैसले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व के जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में रसोई गैस एलपीजी की कथित कमी पर चिंता जताते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि वो संकट को रोकने और कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए समय रहते कदम उठाने में नाकाम रही। खड़गे के आरोपों पर श्री नड्डा ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि संकट की घड़ी में विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। IUML के हारिस बीरन ने सरकार पर गंभीर रूप से बीमार और लाइलाज मरीजों की देखभाल और उनके जीवन के सम्मानपूर्वक अंत के लिए कानून बनाने की मांग की। कांग्रेस के रंजीत रंजन ने देश के कई सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय नहीं होने पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से स्कूलों में स्वच्छता सुविधाओं का तत्काल सर्वेक्षण कराने और हर स्कूल में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवाड़ी ने जयपुर से सीकर होकर बीकानेर तक के लिए एक वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग की। मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति ने सरकार से कर्नाटक के रायचूर जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान एम्स स्थापित करने का आग्रह किया। भाजपा सदस्य के लक्ष्मण ने तेलंगाना की 27 और आंध्र प्रदेश की 5 जातियों को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की। इसी पार्टी की साधना सिंह ने कहा कि चंदौली जिले में बड़ी संख्या में जनजातीय परिवार रहते हैं, लेकिन वहां एक भी एकलव्य आवासीय आदिवासी विद्यालय नहीं है। भाजपा की रेखा शर्मा ने पंजाब के युवाओं में मादक पदार्थों की बढ़ती लत का मुद्दा उठाया और सरकार से इस संबंध में कठोर कदम उठाने की मांग की। बीजू जनता दल के निरंजन बिशी ने ओडिशा के बोलांगीर जिले में सैनिक स्थल स्थापित करने की मांग की। आम आदमी पार्टी सदस्य संदीप पाठक ने रेलवे टिकट कंफर्म नहीं होने पाने की समस्या उठाते हुए कहा कि रेलवे को लेकर आम लोगों की समस्याओं का कारण अवसंरचना में कमी है। भाजपा के संजय सेठ ने देश में कैंसर के मामलों में वृद्धि पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार से आयुष्मान भारत योजना में इस रोग के मरीजों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि 4 महीने पहले जीएसटी घटाया गया था, लेकिन उत्पादकों का उत्पादन कुछ इस तरह बढ़ाया गया कि करीब 200 उत्पादों में जीएसटी दरें बढ़ गई हैं। भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुए 17 साल हो गए हैं, लेकिन निरक्षरता दूर नहीं हुई है। इससे पहले उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने घोषणा की कि राज्यसभा की बैठकें 19 और 20 मार्च को नवरात्रि, गुड़ी पड़वा और रमजान आदि त्योहारों के कारण नहीं होंगी और इसकी भरपाई के लिए 28 और 29 मार्च को सदन की बैठक होगी। उच्च सदन में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को उनका 6 वर्षीय कार्यकाल का समाप्त होने पर विदाई दी गई। कई सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए भी लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।